दूसरे हक पे चलिए, कुरान पाक को ठीक पढ़ना। आप देखिए कि मैं और आप कुरान पाक जब पढ़ेंगे, अभी रमजान आएगा माशाल्लाह, तो क्या हम इस बात का यकीन रखते कि मेरी तजवीद ठीक है? काफ काफ और हा और हा, और इसी तरह आप देखिए आइन और आइन, फर्क। हम अपने एक्सेंट को अगर आप देखें तो मानी बदल जाते हैं। कई दफा आप लोगों ने ग्रामर की तजवीद की क्लासेस में ये रूल सीखे होंगे कि कुछ गलतियां जो होती हैं वो लहन जली की होती हैं, कुछ खफी की होती हैं, कुछ हराम गलतियां होती हैं। क्या इस रमजान से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी अपनी तजवीद की बेहतरी की नहीं कर सकते? देखिए, जब काम जो करना है तो ठीक ना किया तो एक दफा किया, एक दफा गलत किया ना, और अगर उसको रमजान में अपने बार बार किया तो उतनी दफा गलत करेंगे ना। इसलिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 दिन मौजूद हैं, 10 नहीं तो 8 दिन तो मौजूद ही होंगे ना अल्लाह के हुक्म से। आप कोशिश करके अपनी तजवीद किसी को सुनवा दें, जब सुनवाते हैं ना तो उसमें आपको इंशाल्लाह फायदा होता है। इस साल हमने कोशिश की है अपने पूरे रमजान के थीम की, वैसे संडे को डिटेल्स बताएंगे आपको भी, जो भी लोग हमारे साथ सुनेंगे वेलकम रमजान, लेकिन इस दफा हमने कुरान के साथ किस तरह से ताल्लुक रखना है, हिंट दे देती हूँ, हो सकता है आप मेरे को मिस कर दे तो फिर मैं आपके अजर से महरूम रह जाऊँ। आप देखिए कि बाज लोग 5 पारे पढ़ते हैं ना एक दिन में, 3 तो पढ़ते ही हैं लोग, बजाय इसके कि आप 3 कुरान पाक खत्म करें, आप इस साल एक ही कुरान को 3 बार पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? उसका प्लानर ये बनाया है कि आप एक सादा कुरान पढ़ेंगे, ठीक है? तरीका क्या करें कि पूरे पारे को 4 हिस्सों में बांट लें रुक रुक करके। इंशाल्लाह हम इस दफा तजवीद में भी कोशिश, अपने दौरे कुरान में भी कोशिश करेंगे कि रुक रुक को साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, आप उसके लिए फजर, जोहर, असर और ईशा, मगरिब को स्किप कर दें क्योंकि वो घर वालों का वक्त है, खाने पीने का वक्त है, हर नमाज के बाद एक रुक सपारा पढ़ लें, ठीक है? और मेरे ख्याल 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते जब आप एक सपारा पूरा करते हैं। इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक सपारा हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आपको इसको सुनना चाहिए, कुरान पाक सुनने से समझ आता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको तो खुद अपनी गलतियां नहीं पता चलती, किस तरह से आप यानी इन गलतियों को लेंगे, तो उसका तरीकेकार क्या कर सकते हैं आप लोग? मैंने 2 तरह से प्लानर्स बताए हैं कि आजकल सबके घरों में टेलीफोन्स पे तिलावत मौजूद है। कुरान एक्सप्लोरर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, मुझे वो स्क्रीन से ज्यादा इससे अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से आयतों की सेटिंग सेट कर सकते हैं। आप में से जिसको हेल्प चाहिए होगी एंड पे आप हमारे पास आइए, आपको हमारे एडमिन्स भी बताते हैं, मैं खुद भी बताने को तैयार हूँ। आप अपना एक पहला ही पारा एक दफा किसी कारी के साथ सुने, सादा कुरान खोल लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसके पीछे पीछे पढ़ेंगे, वो पढ़े सुने। यानी कैसे पढ़ना है ये तरीकाकार ज्यादा डिटेल से बाद में होगा, लेकिन इस दफा आप इस नीयत से इस कुरान के साथ लेकर चलिए अपने आप को कि मैंने इसका मैक्सिमम हक अदा करना है। फिर उसके बाद देखिए कि कुरान को तर्जुमा, अब तीसरा हक क्या होता है कुरान का, कि इसको समझे। पढ़ना भी सीख लिया तो अब समझना सीखना है, अब जब समझना सीखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तर्जुमा समझना पड़ेगा ना। दुनिया की कोई किताब बगैर समझे नहीं पढ़ी जाती सिवाय कुरान के। आज ये कहावत मारूफ हो चुकी है कि कुरान वो बुक है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली किताब है। अभी मैंने अर्ज किया कि अमेरिकन लॉ को भी हम मानते हैं, समझते हैं तो मान लेते हैं उसकी हिकमत को, उसकी विजडम को, लेकिन इस किताब के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम इसको सुने, और उसका बेस्ट तरीका दौरे कुरान है, जो मैं सोचती हूँ कि बंद खिड़कियां खोलता है जहन की। कितने लोगों के दीन के सफर की पहली ईंट दौरे कुरान होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अब करते हैं, आपको जिसका समझ आता है आप बड़े शौक से करें। इधर आपके शहर में ऑन साइट कोई चीज मौजूद है, मोर देन हैप्पी, बैठिए सामने बैठकर जैसे इस वक्त मेरे साथ बैठ के कर रहे हैं ऐसे करके देखिए। आपको ये ऑप्शन हासिल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। माशाल्लाह कई मीडियम्स हैं, टेलीफोन के ऊपर, वेबसाइट्स पे, और क्या कुछ है, ये सारी डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो बाद में आपको साथ ही देंगे, लेकिन एक दफा हम इस कुरान को समझे तो सही। ये कहता क्या है? मैं अक्सर अपना कुरान खोलकर, मेरा फेवरेट कुरान वो है जो अरबी अरब से आता है ना, ग्रीन कलर, ब्लू कलर का, और ग्रीन भी होता है जो किंग फहद का छपा हुआ, बस मैं उसको ऐसे खोल के ना उलटती पुलटती, मेरे फोन में कंप्यूटर पे भी आता है, आप अगर लेना चाहें आपके लिए मैं एक अपना सदका जारिया छोड़ रही हूँ, quranflash.com। अगर ये स्क्रीन बड़ी होती तो मैं इनको कहती अभी खोल के आपको दिखाएं, लेकिन अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन छोटी होगी और आप सारे पीछे से नहीं देख सकेंगे। लेकिन उसका तरीकाकार क्या होता है कि quranflash.com खोलें और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो मैं अपने फोन कंप्यूटर पे वही खोलती, वो बिल्कुल वही मुसहफ है जो आखिरी हर पेज की आयत जो है वो आयत पे खत्म होती है, और मैं चूंकि खोलती हूँ ई कॉपी भी वही है, तो वो मुझे उसमें से पढ़ना बहुत आसान लगता है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो बहरहाल आप क्या कर सकते हैं कि जब दौरे कुरान की आपको ऑप्शन मिले आप इसको अवेल करें। यकीन कीजिए कि इससे आपको जो फायदा होगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है माशाल्लाह। पिछले 2001 से अभी ह्यूस्टन से आई हूँ तो साथियों ने याद करवाया, मुझे तो सन याद नहीं रहते, कि पहला दौरे कुरान हमने यूएसए में आने के बाद 2001 में किया था, और वो 4 घंटे में था ऑनलाइन पे। ना सिर्फ ये कि पेलटॉक पे है बल्कि स्काइप पे भी है और टेलीफोन पे भी है, विज आई क्यू है और इसी तरह मैक्सलर है, कई मीडियम्स हैं। ये टेक्निकल चीज़ें बाद में बताऊंगी, लेकिन आप एक नियत कर लीजिए इस दफा कि मैंने कुरान को सुनना है। देखिए जब सुनेंगे तो बात समझ आएगी ना, कोई भी बात जब हम अपने अमल के नाते से उसको सुनते हैं तो समझ आती है ना, फिर आप देखिएगा कि उसके बाद ही तो अमल करने को दिल करता है। नबी सल्लम पर जब भी कोई आयतें नाजिल होती थी आप क्या करते थे, आपके सीने पे अल्लाह ताला उसको नाजिल कर देता था, आपकी जुबान पे भी आ जाती थी, फिर उसके बाद क्या होता था, आप अपने सहाबा से वो शेयर करते थे, फिर आप उन्हीं आयतों का मफहूम या जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी तफसीर लोगों को बताते थे, और हर सहाबी उस पर अमल करता था। अगला मरहला जो अमल का है वो तो आएगा ही तब जब आप उसको समझेंगे। आप मुझे तो नहीं मिला, आपको कहीं मिले तो मेरी भी मदद जरूर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पे सहाबा को जमा किया हो और एक माइक लगाया हो और कहा कहा कि अल्लाह के बंदो नमाज पढ़ा करो, और अल्लाह के नबी सल्लम औरतों की किसी मजलिस में गए और उनको जाके कहा कि माओ बहनों बेटियों पर्दे किया करो। मुझे ना हदीसों में ये टॉपिक मिला ना मुझे कुरान में मिला। उस दौर में लोग मुसलमान होने का मतलब ये समझते थे अमल करना। आज हम मुसलमान ये सोच बैठते हैं कि हम इस किताब पर ईमान लाकर ही इसको मानने वाले हो गए। देखिए हर मुसलमान जन्नत में जाएगा कौन, जो मुसलमान होगा। और मुस्लिम किसको कहते हैं, इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब उसके रब ने उसको कहा कि तू मती हो जा, सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे, तो उसने कहा अल्लाह मैंने तो पहले ही कर दिया। नाम लिए बगैर आप सबको पता चल जाएगा कि ये इब्राहिम थे। अल्लाह ने बचपन में माँ बाप के जरिए से आजमाया तो उस आजमाइश में पूरे उतरे, जरा से बड़े हुए तो खानदान की आजमाइश आ गई, थोड़े से बड़े हुए तो बीवी की आजमाइश आ गई, और थोड़े बड़े हुए तो बीवी बच्चे की आजमाइश आ गई, और बड़े हुए तो बेटे की गर्दन पे छुरी चलने की आजमाइश थी। किसी जगह इब्राहिम के कदम नहीं डोले, क्योंकि इब्राहिम को ये पता था कि नाम किसी ने मुसलमान रख भी लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल यह है कि इसकी बात को समझो। कुरान का जो अगला हक है वो ये है कि इसको अपनी जिंदगी में लाओ, ये तुम्हारी जिंदगियों के किबले बदले, तुम्हारी खुशियां गम इस कुरान के मुताबिक हो। ये चौथा हक है, अभी हम चौथी सीढ़ी पे पहुंचे हैं। सच बताइए, अपने माहौल के इर्द गिर्द जान नजर डालकर देखिए, एक चक्कर अपने मुल्कों का लगाइए, एक शादी अटेंड कर लीजिए, किसी की मौत के फंक्शन को जाके अटेंड कर लीजिए, और घर आकर खुद से सवाल करें, क्या जो कुछ आज हम मुसलमान कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, और जिस चीज को जिस तरीके से हमने इख्तियार किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इख्तियार किया था, वल्लाही ऐसा नहीं है। आज हमारी जिंदगी कुछ और है और कुरान कुछ और है, और आज मेरे और आपके अमल की कमी ने बहुत सारे लोगों का कुरान और इस्लाम की तरफ आना रोक दिया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, हम सब इस हॉल में बैठे हैं, आप में से मेरे में से कुछ लोग बिल्कुल इस डोर तक आ जाएं, बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या सोचेंगे कि हॉल भर चुका है और ये तो पहली डोर पे खड़े हैं और दरवाजा ब्लॉक है, वो अंदर ही नहीं आएंगे क्योंकि अंदर जगह नहीं है, चले गए तो घुटन बहुत होगी, तो बेहतर है कि फिर हम यहीं से पलट जाते हैं। जो लोग इस्लाम के दरवाजों पे खड़े हैं, इस्लाम का दरवाजा क्या है कि जुबान का इस्लाम अमल का नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونا مشکل کس کو لگتا ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو من یعبد اللہ علی حرف, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کناروں پر رہ کر, خیر پہنچتی ہے, فائدہ پہنچتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے, اور جب نقصان کا ڈر ہے, قربانی اور ہجرت مانگتا ہے اسلام, تو وہ اس سے بھاگنے لگتا ہے. آج میں اور آپ مسلمان دنیا میں جو چوٹیں کھا رہے ہیں نا, واللہ اس کی وجہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. آج اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اور اجتماعی توبہ کے لیے اپنے گناہوں کا احساس ہونا لازمی ہے. کبھی بھی کوئی انسان جو ذاتی زندگی میں گناہ کرتا ہے نا, صرف اس تک نہیں رہتا. ہو سکتا ہے کسی جگہ مسلمان بچے کے جگر کو چھلنی کیا گیا, یہ میری کسی مستی کا نتیجہ ہو. کیونکہ وہ ایک شعر بھی ہے نا جس کا خلاصہ کہے کہ افراد کے گناہوں پہ تو تھوڑا سا غماز کر ہی لیتی ہے, لیکن جو قوموں کے گناہ ہوتے ہیں فطرت اس پہ نہیں چھوڑتی. آج میں اور آپ, ہم مسلمان جس قرآن کو دنیا میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کر تو لوگ کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے. کیونکہ قرآن کا اگلا حق جو اصل میں حق ہے, جو درد ہے, جو آج کے دور کی پکار ہے, جس کو لے کر آج گلی گلی کونے کونے میں پھیلنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ ابلاغ. پانچ انگلیوں کی پانچ ٹپس پہ ساری باتوں کو ایک دفعہ دہرا کے وہاں پہ پہنچ جائیے. پہلی چیز ایمان. الحمدللہ گئے گزرے دور میں ابھی کافی لوگوں کا ایمان دکھتا ہے, اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کو صحیح پڑھنا. کسی بھی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجئے, کسی عرب ٹیچر کے پاس چار پانچ دن جائیے, ایک ایک رکوع پڑھ کے سنائیے, الحمدللہ ایک 15 دن میں آپ کی تجوید ٹھیک ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نا سمجھی کے ساتھ قرآن کے کورسز ڈراپ کر کے صرف تجوید پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور میں ایسی بھی سسٹرز کو جانتی ہوں کہ ماشاءاللہ عمر کی 50ویں 60ویں بہار پہ ہیں, تو کہتی نہیں ابھی ایک دفعہ پہلے پورا قرآن تجوید سے پڑھوں گی پھر تفسیر کا شروع کروں گی. تو میں دل میں سوچتی ہوں اللہ پھر مہلت دے آپ کو, 10 سال سے تو آپ صرف تجوید پہ لگی ہوئی ہیں, اللہ نے کو پتہ ہے آگے کتنی عمر ہے, کہاں جانا ہے, آپ نے کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ قرآن بس پڑھ کے چلی جائیں گی. یقین کیجئے تجوید از ناٹ اے بگ ڈیل. 10-15 دن میں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نہیں چاہتا کہ وہ مشاری بن جائے, اللہ نہیں چاہتا کہ امام کعبہ بن جائے. موٹی موٹی غلطیاں نکال لیجئے, اٹس اوکے. پڑھے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط پڑھیں, دیکھیے بات کو سمجھیے گا, غلط طرح سے نہ باہر بات کیجیے گا. قرآن کو پڑھنا ایک ٹول ہے, اصل چیز تک پہنچنے کا وہ ٹول آخر میں. صحیح پڑھیں گے تو دوسروں کے دلوں پہ آئے گا, اور وہ قرآن جو دوسروں کے دل پہ اثر نہیں کرتا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اس کو ٹھیک پڑھتے نہیں ہیں. آج بھی ہم جب کسی کی آواز میں قرآن سنتے ہیں تو دل پگھلتا ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو میں آپ کے لیے پلے کر سکتی ہوں ایک دو آوازیں, کہ جس کو سن کر کوئی کہے نہ کہے ہمیں اس کا معنی مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے. جب قرآن سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ اگلا حق لے لیں تو آواز میں سوز اور بھی آتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا امام کعبہ تڑپ تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی مشاری کی آواز میں, کبھی محسنی کی آواز میں, کبھی ہانی رفائی کی آواز میں آپ نے قرآن سنا؟ کیوں آواز آتی ہے ان کی دل میں؟ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں لوگ جہنم کی آیتوں پہ روئیں گے, میں نے جو نوٹ کیا عرب قاریوں کو وہ جنت کی آیتوں پہ زیادہ روتے ہیں. وسیق الذین اتقوا رب الى الجنت زمرہ. بھئی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ نہیں, وہ خود کو وہاں محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جس وقت لوگ جنتوں کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے نکال تو نہیں دے گا. قرآن سن کے رونا نہ آنا یہ بدبختی کی علامت ہے. تو قرآن کو ٹھیک پڑھیں گے, اس کا معنی سمجھیں گے, انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی. لیکن یاد رکھیے ابھی بھی اصل پہ نہیں پہنچے. کئی ایسے نان نیو مسلم ہیں وہ صحیح قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے, ان کی زبان میں دال ہے ہی نہیں. کیا آپ نے یہاں USA میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو نماز پڑھاتے نہیں دیکھا؟ غیر المغدوبی مغدوبی بولی نہیں پاتے. اب میں نے خود ایسی جگہ نماز پڑھی ہے کہ امام کے پیچھے, کہ وہ بلیک مسلم ہے. اب 5 سال 10 سال میں وہ کہاں کہاں سے پڑھا ہے, ان کی لینگویج ہی ایسی ہے, وہ قرآن ایسے پڑھ ہی نہیں سکتے جیسا کہ پڑھنا ہے. لیکن کیا وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ یہ ٹولز ہیں, یہ سب پڑھنا, اس کو سمجھنا. اصل میں جو دو بڑے بنیادی حق ہیں قرآن کے, ایک تو کیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا قرآن بن جائے. ہر بندہ قرآن کتابوں میں ہم سے نہیں لے گا. آپ کہہ لیجئے کہ قرآن کی ہارڈ کاپی یا PDF کاپی ہر ایک ہم سے نہیں لے گا. آپ دیں گے وہ کہیں گے نو تھینکس. जिस कुरान को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता वो आप और मैं चलते फिरते कुरान है, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी के बारे, हजरत आयशा से जब पूछा गया कि सुनाओ नबी सल्लम कैसे थे, कहने लगे उनकी क्या पूछते, वो तो चलते फिरते कुरान थे। काना खुलुका हुल कुरान। आज हम मुसलमान अगर अपनी किताब पर अमल नहीं कर रहे तो याद रखिए कि हम कई लोगों के इसकी तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक रहे हैं। आज फिर लोग अगर कहते हैं कि हमें वो कुरान चाहिए जो हकीकत में तुम लोगों के अमल में वो दो, ऐसे वाकयात हुए लोगों के साथ कि जब उनको कुरान के नुस्खे पेश किए गए तो उन्होंने कुछ दिन के बाद वापस कर दिया कुरान का, नहीं भाई मैंने सारा पढ़ा है, मुझे वो कुरान चाहिए जिस पे तुम मुसलमान आज अमल कर रहे हो। आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस का दौर है, और मैं अक्सर ये बात उम्मीद के साथ कहती हूँ कि हम तकरीबन 400 साल से सो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने और आपके नबूवत के मिलने से लेकर 1000 साल तक, 1000 ईयर्स तक मुस्लिम रूल था दुनिया में। ये इंशाल्लाह संडे के लेक्चर में मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवाऊंगी तो आप खुद देखिएगा, क्योंकि इस साल का हमारा दौरे कुरान का थीम ही है कि मुसलमान माजी हाल और मुस्तकबिल, माजी रोशन, हाल ल्यूटेड और मुस्तकबिल महदूश। हर वक्त क्या खौफ नहीं लगा रहता कि किसी तरह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई दुनिया में गोली चले तो नाम मुसलमान का, जहाज हाईजैक हो जाए तो मुसलमान, बिल्डिंग गिरे तो मुसलमान, क्या ये तुरीबत अलैहिम वज़िल्लुल मस्कना की कैफियत नहीं है? 83 आयत है कुरान की सूरह बकरा में, अफतुमेनूना बिबा दिल किताब बिबा तक फुरूना बिबा, क्या बस तुम किताब के बाज हिस्से पर ईमान लाते और बाज हिस्सों को तुम छोड़ देते हो? चलो ठीक है, जो ऐसा करेगा तो उस कौम की सिर्फ एक ही सजा है, इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया, अल्लाह ऐसी कौम को दुनिया में नीस्तो नाबूद कर देता है। याद रखिए कुरान के साथ हम जो मामला करेंगे वो मामला अल्लाह मुसलमान के साथ करेगा। अल्लाह ताला ने सूरत गालिबन बनी इसराइल में आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े कैसे करते हैं? एक तो ये हमने पारों की सूरत में बांटे हुए ना, ये टुकड़े नहीं है। टुकड़े क्या है? इस हिस्से पे तुम अमल करो, इस पे मेरे से नहीं होता, पढ़ाऊंगी मैं अमल तुम करना। आज हम मुसलमानों का ये हाल है। देखिए आज कुरान के इल्म का बहुत दौर है माशाल्लाह, जैसे जिक्र किया कि आज वाकई 100-100 की उम्मत उठ रही है। तकरीबन पिछले 400 साल से हम मुसलमान गहरी नींद सोए हुए थे, और अफसोस की बात यह है कि आज हमारी जो नस्लें जिसमें हम खुद भी हैं और इवन हमारे माँ बाप पीछे वाले, उन्होंने इस्लाम का रुझ नहीं देखा। ना हमने सहाबा को देखा, ना ताबईन को देखा, ना तबा ताबईन को देखा, ना मुहद्दिसीन को देखा, आइमे कराम को हमने नहीं देखा। हम तो उस दौर में इस दुनिया में भेजे गए कि जब इस्लाम की शम्मा से इतनी दूरी हो गई कि टुम टमाते हुए छोटे छोटे शोले दिखे। हमारे बच्चों ने इस्लाम की कोई तरक्की नहीं देखी, हमारे बच्चों के कानों ने आज मीडिया से वो आवाज़ें सुनी कोई नहीं है कि वो फलां मुसलमान उसने अलजबरा डिस्कवर किया, वो अलबेरूनी, वो हैसमी और वो फलां और फलां। आज देखिए दुनिया में जितने साइंस अपनी पीक पे, जितने उलूम अपनी पीक पे, सब के पीछे से मूजिद मुसलमान थे। एक दौर था लोग लफ्ज़ मुसलमान सुनकर आइडियलाइज करते थे वो। और याद रखिए जो कौम दुनिया को डिस्कवरीज देगी, इन्वेंशंस करेगी, वम ममा यनफो नासुफ यमकुस के असूल के तहत जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। मैं और आप कुरान का जो असल हक है इबलाग, इस पे कब पहुंचेंगे? जब हम इन पिछले चार हकूक को बेहतरीन तरीके से पूरे कर चुके होंगे। देखिए आप सबने सीरत भी बहुत दफा पढ़ी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र तक मक्का में थे ना? क्या मक्का वाले आपसे प्यार करते थे? बहुत करते थे। सादिक और अमीन आपको कहा गया, हिल्फुल फजूल में आपको सालिस बनाया गया, आपकी वजह से बहुत बड़ा मुआहदा तय पाया। हिजरे अस्वद की तनसीब के मौके पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, लेकिन आपकी हिकमत अमली से अल्लाह ताला ने उसको हटवा दिया, हुआ ना? सबको पता है लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। आपने जब कुरान पेश किया पहली वही इकरा बिस्मी का, इकरा बिस्मी रब्बी का, अभी दो दिन पहले सिर्फ इस आयतों पे मैंने यही रब दिया है कि कुरान की पहली वही और रमजान में जो आई उसका आपस में रब्त क्या था। लेकिन आप जानते हैं कि सारी दुश्मनी जो नबी सल्लम से मक्का वालों को, वो किस दिन से हुई? कुम फानजर। आप कुरान पढ़ते रहे, लोगों का बुरे नहीं लगते। नबी सल्लम इमेजिन कीजिए मक्का की गलियों में आवाज लगाते, लोगों मेरे ऊपर एक कुरान नाजिल हुआ, उसकी फलायत पढ़ लो तो तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, फलायत पढ़ लो तो शुगर ठीक हो जाएगी, फलां का विर्द कर लो तो तुम्हारे तुम्हारे मियाँ को जॉब मिल जाएगी। क्या लोग दुश्मन होते? वो तो पानी की बोतलें लेकर आते कि हम पे भी दम कर दो। इस कुरान से तो मैंने खुद अपनी आंखों से नॉन मुस्लिम्स को भी फायदे उठाते देखा है। वो भी कहते हैं दुआ कराओ, वो भी मुसलमान बुजुर्गों की कब्रों पे जाके दीप जलाते हैं और 5 रुपए की नियाज देते हैं कि चलो यहाँ आके दुआ मांग लेते हैं, दुआ ही है ना, मान लेंगे। असल लड़ाई और असल झगड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और आज भी इसी बात पे था, जब दूसरी वही नासिल हुई, कौम फांजर खड़े होइए और आगाह कीजिए, वॉन कीजिए। ये है असल में कुरान का हक। ये जो पिछले 4 हकूक है ना, बहुत दफा हम दरसों में, मैंने खुद बहुत दफा इस पे दर्स दिया, और सूरह बकरा की जो आयत है ना, कि अल्लज़ीना यतलूनहू हक्का तिलावती, उसमें इसको बहुत डिटेल से बयान करते हैं कि पहला हक, दूसरा हक, तीसरा हक। लेकिन उन सारे हकूक की तफसीलात में ये आखिरी हक नहीं आता और वक्त पूरा हो जाता है। लेकिन आज मैं और आप अगर यहाँ रमजान के दरवाजे पे खड़े कुरान के हकूक को लेने आए हैं ना, तो वल्लाही इस कुरान का सबसे बड़ा हक यह है कि इसको गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, कोने कोने में पहुंचा दो। ये खून है। अल्लाह ताला कहते हैं, कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। कैसे? कजालिका जालनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुमको उम्मत वसत बनाया। अब उम्मत वसत क्या है? इस इंसानियत के तौर में ऐसी है जैसे जिस्म में दिल है। आप देखिए दिल क्या है, सीने में है ना, सदर। दिल धड़कता है तो खून पंप होता है। आप अपने नोट्स में एक छोटी सी तस्वीर बना लीजिए, हार्ट है और उसके अंदर ब्लड जा रहा है। और माशाल्लाह आज के दौर में साइंस से इतनी तो आगही है कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, उसको जहन में रखिए। जिस्म में जो दिल है ना, उसके इर्द गिर्द फिर चार दिल के चार खाने हैं, फिर उसमें चार बड़ी पाइप्स हैं, दो नीली हैं, दो नीली और दो सुर्ख है, दो आर्टरीज हैं और दो वेन्स हैं, समझे ना। दो में साफ खून है, दो में गंदा खून है। जो साफ खून है वो दिल से जिस्म की तरफ जाती है, और जो गंदे खून की है वो जिस्म से दिल की तरफ आती है। एक सिंपल सा रूल है। यही काम मुझे और आपको करना था। पूरे मुआशरे की गंदगी को ये मुसलमान उठाएंगे और इस कुरान के नूर से पाक कर देंगे। इसके लिए हमें एक ऐसा जाल फैलाना है कि गली गली, कोना कोना, छोटी छोटी जगहों पर इस कुरान का पानी पहुंच जाए। जब मुसलमान खुद ये 4 हक पूरे कर चुका होता है ना, अमल तक ढल गया, किरदार का गाजी बनता, गुफ्तार का नहीं रहता, तो फिर 90% काम तो हो गया। लोग क्यों हैरान होते थे सहाबा को देखकर, कभी आपने सोचा? क्यों एक शख्स मुल्क शाम से आता है और कहता है, बताओ उमर कौन है? कहा, तुमने उमर नहीं देखे? कहा, नहीं देखे। कहा, इधर ही होंगे कहीं, देख लो। एक मौके पे आता है, कहा, उमर किधर है? कहा, वो बैतुल माल का एक ऊंट चोरी हो गया, उसको ढूंढ देंगे। अल्लाह अकबर, हुक्मरान लीडर और एक ऊंट चोरी हुआ ढूंढ देंगे, वाह, दिल पे रोब आता कि नहीं आता? और एक मौके पे एक शख्स मदीना में आता है, ढूंढता ढांढता मस्जिद नबी में गया, क्या देखते कि एक शख्स फर्श पे सो रहा है, अपने बाजू का तकिया बनाए हुए है, और इतनी गहरी नींद है कि आधा धड़ धूप में आ चुका है, उसको पता ही नहीं है। किसी राह जाते को कहते, ये कौन है? कहा, तुम इसको नहीं जानते? इसका था कि तुम नए हो इस शहर में, ये हमारे अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। मीडिया का दौर नहीं था, कवरेज नहीं थी, स्काइप नहीं था उस वक्त कि मिनट मिनट की खबरें मौजूद हो। कहा, अच्छा। वहां खड़े होकर उस शख्स ने जो जुमले बोले, आज भी हिस्टोरियंस उसको लिखते हैं, कहते हैं, उमर, ये वो उमर है कि जिसने कैसरो किसरा की रातों की नींद उड़ाई भी है, और है उमर, तू इतने सुकून से सो रहा है क्योंकि तूने अमन कायम किया। इतना रोबतारी होता है। एक और सेक्टर है मुसलमानों का, दुश्मनों के साथ मुकाबला है। उस दौर में जंगें मुहज़्ज़ब तरीके से लड़ी जाती थी, सिर्फ उनको मारते थे जो मैदान जंग में मारने के लिए निकले, और इधर सूरज डूबा उधर वो अपने कुचारों में चले गए, वो अपनों में चले गए, रातों को खाने देते थे एक दूसरे को, अगले दिन फिर लड़ेंगे। एक रात जब आई तो दुश्मन फौज का एक शख्स उसके दिल में आया कि जरा मैं देखूं ये मुसलमान है कौन, करते क्या और क्या किया उसने। मुसलमानों के लश्कर ने जहां पड़ाव डाला था वहां जाके उसने मुहासरा किया, ढूंढूं क्या कर क्या रहे हैं, जरा सीआईडी तो करूं कि रातों को क्या करते हैं। तो उसको लश्कर इस्लाम के पास से शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज आई। सोच में पड़ गया ये क्या हो रहा है, और जब जरा सा करीब जाकर देखा तो क्या देखा कि लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही तहज्जुद में अपने रब को कुरान सुना रहा है। अल्लज़ीना यतलूनहू हक्क तिलावती। इतना उसके दिल पे रोब तारी हुआ, वापिस गया अपने कमांडर को और अपने लोगों को जमा किया और कहने लगा ये मुसलमान अजीब लोग हैं, कैसे लोग हैं। हम फुरसानुम बिन नहारी व रुहबानुम बिल लैल। ये दिन को शाह सवार बन जाते हैं, यानी घोड़ों की पुश्तों पे बैठकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते हैं, और रातों को रब के खौफ से रोने वाले बन जाते हैं, ये राहे बन जाते हैं। फिर कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि इस लश्कर से मेरा मुकाबला हो और मैं जीतूं, बल्कि मेरी दुआ ये है कि कभी इस फौज से मेरा मुकाबला ही ना हो, और मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि इनको इनके हाल पे छोड़कर तुम चले जाओ। ये था मुसलमान, रातें उसकी कुरान के साथ और दिन उसके कुरान को फैलाने के साथ। देखिए सूरत मुजम्मिल और मुदस्सिर साथ साथ है कुरान में, आपको उनका रब पता है, और दोनों करीबुल नजूल हैं। 2-3 साल पहले जो दौरे कुरान हुआ तो वो तरतीब नजूल के साथ दिया था अल्लाह के हुक्म से कि कौन सी सूरत पहले नाजिल हुई तो कौन सी बाद में और उसके मुताबिक। तो इन दोनों सूरतों का क्या आपस में रब्त है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए ओढ़ने बिछोने वाले उठ, रातों को जागो इतना नहीं, और जिद ही और कुछ कम कुछ ज्यादा। यानी सूरत मुज़म्मिल में क़याम फिल लैल है, जिसको आज के दौर में मैं और आप कहते हैं क़यामुल लैल करो। एक ईमान वाला कुरान के हकूक में से ये हक अगर नहीं देता कि अपनी रातों को कुरान के नूर से रोशन करे। रात को अल्लाह के सामने खड़े नहीं होंगे तो दिन में अल्लाह के बंदों के सामने नहीं खड़े होंगे। क्या कहा कि थोड़ा रातों को पढ़ा करो फिर सो जाया करो। क्यों? इन्ना लकफिन नहारि सबहन तवीला वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अच्छा अब इधर क्या हुआ, रात को अल्लाह के आगे झुको। तो अगली सूरत मुद्दसिर या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानजिर, दूसरी वही तरतीब के एतबार से। ए चादर लपेटने वाले उठो, अब सोने के दिन गए, अब उठिए कुम स्टैंड अप फानजिर। ये है असल कुरान का हक। मुझे तो अपनी इस छोटी सी कोशिश में जो मैंने इन चंद सालों में की, मुझे सिर्फ एक ही बात आज तक समझ आई, और यही क्वेश्चन लेके दिन रात लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ कि ये हक अदा करने वाले आज कितने हैं। इंतजार, हर नबी के दुनिया में आने का मकसद इंतजार। नबी सल्लम का लकब नजीरम व बशीरा, खुशखबरियां दो और आगाह कराओ। आज उम्मत मुस्लिमा सो गई, कहते नहीं माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, एवरी वन इज कंफर्टेबल विद देयर रिलीजन। ये आज सजा मिल रही है मुझे और आपको। ये जो आज कचोके पड़ते हैं ना, मैं कुछ सालों के बाद किसी जलजले का और किसी सैलाब का, और हर वक्त दुश्मनों की तलवारों के रुख जो हमारी तरफ है, ये सजा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब तुम बैलों की दुमे थाम लोगे और तिजारत तुम्हें प्यारी हो जाएगी और तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। आज देखिए हदीस, मैं अपने सिर्फ आपको कोड नहीं करवा रही, सिर्फ आपको एहसास दिला रही हूं कि हदीसों में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को जिंदगी का मकसद बताया गया। फरमाया जब तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे अल्लाह तुम पर दुश्मनों को भेज देगा, और आज यही हो रहा है। आज आप सोचते हैं कभी कि हम मुसलमान क्यों पिसते हैं? उलामा इकबाल की जवाब शिकवा, और शिकवा तो आपने सुनी होगी ना, बर्ग गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, रहमतें हैं तेरी अखियार के काशयानों पे। कहते हैं कि अल्लाह गैरों पे तू बड़ा मेहरबान है। आज हम भी देखते हैं आप वेस्ट में कदम तो रखे जरा, एयरपोर्ट पे दाखिल हो आपको साफ पता लग जाएगा ये किसी नॉन मुस्लिम मुल्क का एयरपोर्ट है, और आप सिर्फ अपने मुल्कों के एयरपोर्ट पे दाखिल, क्या अभी जहाज से निकल जाएं आपको एटीट्यूड से, रवैये से, हाल हुलिये से पता चल जाएगा अपनों में आ गए हैं। वहां की सफाई से लेके, वहां की मासियों के बिहेवियर से लेके, वहां एक दूसरे को खा जाने वाले अंदाज में देखने से क्या वजह है? देखिए आप बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सोचें, हमारे दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मोहब्बत की जड़ें बड़ी गहरी हैं। हमने बचपन से यही सुना है क्योंकि चारों तरफ हमारे मुस्लिम थे, हमारे कुरान पढ़ाने वाले भी और हमारे उस्ताद भी अल्लाह की मोहब्बत में रचे बसे थे। मुझे गम पड़ता है आज की नस्लों का जो गैरों में पलप रहे हैं। आप देखिए ना कि एक पौधा जो अपनी खेती के पौधों में है ना, तो वो दूसरे को भी देख के खड़ा हो जाएगा कि बाकी भी खड़े हैं मैं भी खड़ा रहूं, लेकिन पौधे हों कोई और बीच में जड़ी बूटियां उगी हों तो सरवाइव नहीं करते। आज हमारे बच्चे इस्लाम के साथ क्यों वो निस्बत नहीं महसूस करते, इल्ला माशाल्लाह, क्यों? चारों तरफ वो देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉन मुस्लिम, वक्त के पाबंद नॉन मुस्लिम, सड़कें इनकी साफ, बाथरूम इनके साफ, जहाज से लेकर सुई तक मेड इन चाइना और मेड इन जापान। पाकिस्तान में क्या बनता? जूते, कपड़े, और वहां क्या है? सड़कें टूटी हुई, और हम खुद असाइलम बन के आते हैं और आते हैं और अपने मुल्कों को बदनाम कर देते हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं सोचते कि अम्मी आखिर ये मुसलमानों के हालात इतने खराब क्यों हैं? खराब इसलिए कि आज हम सबको इज्तमाही तौबा की जरूरत है। जब तक हम अपने गुनाहों पे सच्ची तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से ये सख्तियां उतरती रहेंगी। और तौबा क्या? अपने गुनाहों पे नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करना। याद रखिए ये कैसा उरवतुल वुस्का है कि जिसको थाम लिया अगर, तो आज की मायूसियों में पड़ा हुआ मुसलमान दोबारा अल्लाह की रहमत में आ सकता है। क्या हम सिसक सिसक के दुनिया से चले जाएंगे? आप 10 बातें कर लें आज के दौर में, ये आज के दौर का ये मसला, आज का ये प्रॉब्लम, आप कहते हमारे बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें, नॉन मुस्लिम मुल्कों में हैं, गैरों में जाएं, अपनों में जाएं, हिजरत कर दें, आप कुछ भी कर लें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस दिन पड़ेगा जब स्टेप बाय स्टेप हम चार हिस्सों को अदा करते करते हम में से हर एक इस कुरान को फैलाने का एक ऐसा खूबसूरत नुमाइंदा बन जाए। वी आर एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। आप आज घर जाके अपने 12-14 से लेकर 18-20 साल के बच्चों से पूछ के देखिए कि बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट यू वांट टू बी। हमें भी लोग पूछते थे, हम भी पूछें कि बड़े होके क्या बनोगे, और मेरा फेवरेट शुगल है जिन घरों में जाती हूँ उनके ऐसे उम्र के बच्चे जो बीच के होते हैं, मैं उनसे ये जरूर पूछती हूँ बेटा बड़े होके क्या बनोगे। पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनूंगा बहुत है, किसी ने कहा फुटबॉलर बनूंगा, किसी ने पता नहीं कुछ, हर एक बच्चा अपने हिसाब से कहता है कोई कुछ। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है लेकिन और क्या करते हैं आप? जब थोड़ा सा उनको समझ आती तो फिर कहते मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी करूंगा। कल कोई और भी कहीं से पूछ रहा था कि हम अपने बच्चों को मजहबी लीडर बनाने का ख्वाब दिखा सकते हैं, बस अमूमन हम यही कहते हैं ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या वट एवर। तो अगर हम अपने बच्चों को ये कहें कि तुम इस्लाम के स्कॉलर बनोगे तो ये ठीक बात है? तो मैंने कहा बहन आपको इसमें शक किस बात का? वही इज्जत वहां भी मिल जाएगी, वही माल वहां से भी मिल जाएगा। आप लोगों को नफा तो दें,